श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है कि भक्ति का सुख है ब्रह्मानंद से कोटि कोटि गुना अधिक होता है। भगवान के अंगों के से जो ज्योति निकलती है जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसका अनुभव करके ज्ञानियों को जो सुख प्राप्त होता है वह सुख इतना अधिक होता है कि वे लोग संसार को मिट्टी की तरह भूल जाते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी शुरू में इसको ब्रह्म सुख कहते हैं, इतना निमग्न रहते हैं उस सुख के आगे संसार का या स्वर्ग का ब्रह्म लोक तक का सुख फीका लगता है, परंतु उससे भक्ति का सुख कोटि कोटि गुना अधिक है। भगवान के रूप को मन में देख करके उनसे प्रेम करके जो सुख प्राप्त होता है उस सुख के आगे ब्रह्मानंद का सुख बहुत फीका, ब्रह्मानंद फीका। यह परम शब्द देकर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान के स्मरण भजन में पूजन में राजर्षि भरत को सर्वाधिक आनंद प्राप्त होता है, परम निवृत्ति मिला पर, इसलिए उपरत विषय अभिलाष है, संसार के भोगों की लालसा कभी थी ही। जब उत्कृष्ट सुख प्राप्त होता है तो निकृष्ट सुख की चिंता क्या करेगा कोई। रसवर्जन रसोप्य से परम दृष्टया निवर्तते, तो इस तरह भगवान निष्ठा बढ़ी हुई थी। उपशम का अर्थ होता है वाणी कृष्ण में चली जाए, नेत्र कृष्ण में चला जाए, मन कृष्ण में चला जाए, इसको उपशम कहते हैं या शांति कहते हैं। और जब इंद्रियां विषयों में चली जाती हैं तो इसको अशांत कहते हैं। भुक्ति मुक्ति सिद्धि का भी सकल अशांत, जो भोगी होते हैं मुक्ति की इच्छा करते हैं उनका चित्त अशांत होता है, दुख में रहते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतः अशांत, कृष्ण का भक्त शांत होता है, इसको उपशम कहते हैं। भगवान में चित्तवृत्ति का लग जाना, मन का देह रूप से लग जाना, तो इसलिए उनको परम सुख प्राप्त हो रहा था। श्रीमद् भागवतम में सब जगह शुद्ध भक्ति दिखाई गई है। जब वास्तव में भगवान से सुख मिलने लगता है भक्त को, तो उस समय अन्य सुख उसे खींच नहीं पाते हैं। सबको इस सुख का अनुभव मिलता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए आप खूब अच्छी तरह से रात में सो करके और मंगला आरती में आवे, चित्त बिल्कुल प्रसन्न हो, आलस्य न हो, स्नान कर चुके हैं, तो भगवान के सामने जब आरती होती है हम खड़े रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा सुख मिलता है, लगता है कि इस सुख के आगे संसार का कोई भी सुख व्यर्थ है। और खास करके ये सोने का सुख है, निद्रा का जो सुख है वह कितना फीका लगता है। लेकिन जो नहीं आता है मंगला आरती में, वो सोचता है बस मुझे ये सुख लेने दो, वो भी अपने समाज से सुख लेता है। लेकिन वही सुख लेने वाला व्यक्ति जब मंगला आरती भगवान के सामने आ जाता है तो वह अप्राकृत दिव्य सुख प्राप्त करता है। कृष्ण को देखकर सवेरे सवेरे भक्तों का संग होता है, भक्तों को प्रणाम करने का अवसर मिलता है, तुलसी पूजा का अवसर मिलता है, सवेरे सवेरे हमारे मंगलमय जीवन प्रारंभ होता है। यह एक सुख है, यह केवल नियम मात्र नहीं है, वास्तव यह सुख है और प्रत्येक व्यक्ति को यह सुख लेना चाहिए। इसको भगवत सुख कहते हैं। कभी कभी जप में सुख मिलता है, भगवत पढ़ने में सुख मिलता है, भगवान की सेवा करके सुख मिलता है। राजर्षि भरत को भगवान की आराधना में, उनके चिंतन में, स्मरण में इतना सुख मिल रहा था कि उसके आगे ब्रह्मानंद फीका था। फिर विषय अभिलाष चली जाए तो कौन बड़ी बात, संसार के भोगों की लालसा चली। कभी स्वप्न में भी उन्होंने नहीं सोचा कि चलो जरा घूम आऊं अपनी राजधानी की तरफ, कैसे हमारे पुत्र सब काम धंधा कर रहे हैं, सपने में भी नहीं सोचा। तो इस पूजा का अंततः क्या प्रभाव हुआ इसका वर्णन करते हैं। अविरत पुरुष परिचर्या भगवती प्रवर्धमान अनुराग भर द्रुत हृदय सैथिल्य प्रहर्ष वेगेन आत्मने उद्भिद्यमान रोम पुलक पुलक औत्कंठ प्रवृत्त प्रणय वाष्प निरुद्धावलोकनयन एवं निज रमरारण चरणारविंदा ध्यान परचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमालाद गंभीर हृदय हृदयावगार भीषण तामपि क्रियमाणं भगवत सपर्या न सस्मार। तया अविरत पुरुष परिचर्या, अविरत पुरुष परिचर्या, राजा श्री भरत निरंतर भगवान की पूजा करते रहते थे 24 घंटे, ये सोते नहीं थे। भगवत सुख इतना मिल रहा था कि उस सुख के आगे निद्रा का सुख कोई महत्व नहीं रखता है। सोना एक सुख है, इसीलिए हम लोग सो जाते हैं। सोना एक सुख भी है और आवश्यकता भी है, ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है, ऐसा लिखा है। बुद्धि के लिए सोना जरूरी है, नहीं तो ज्यादा जगने वाला भी पागल हो जाएगा। लेकिन जब मनुष्य अध्यात्म के ऊंचाई पर पहुंचता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, तब वह बुद्धि के स्तर से ऊंचा उठ जाता है, शरीर के स्तर से ऊंचा उठ जाता है। थोड़ा खा करके भी वो आनंद से रहेगा, वो नाम मात्र का शयन करके भी वो सुख से रहेगा। जैसे सद गोस्वामी जन हमारे 1.5 घंटा सोते थे, और किसी किसी दिन नाम कीर्तन करते करते वो भी नहीं सो पाते थे, थोड़ी भी निद्रा नहीं लेते। राजर्षि भरत 24 घंटे में 1 मिनट भी नहीं सोते थे, क्योंकि परम आनंद में परम सुख में रहते थे। इसीलिए यहां अविरत पुरुष परिचर्या कह दी, अविरत पुरुष परिचर्या। पुरुष पुरस्कार है भगवान, भगवान की परिचर्या वो सेवा में निरंतर लगे रहते हैं अविरत। और इस कारण से भगवती प्रवर्धमान अनुराग भर दुख हृदय से पुण्य, भगवान में इनका अनुराग प्रवर्धमान निरंतर प्रवर्धित हो रहा है। वर्धमान का अर्थ है बढ़ता हुआ अनुराग, और प्रवर्ध का अर्थ है प्रकर्षण वर्धमान, बहुत तेज गति से अनुराग बढ़ रहा है, बहुत अधिक प्रेम बढ़ रहा है। अनुराग का अर्थ ही है जो नित्य प्रति नवीन होता रहे। राग शब्द है, राग में अनुराग अनु शब्द जुटा हुआ है। राग का अर्थ है भगवान में परमाशक्ति हो जाना, और अनुराग का अर्थ होता है कि उस राग के या प्रेम के खंडित होने का कारण होने पर भी वो ध्वस्त नहीं होता, ध्वंस का कारण रहने पर भी वो ध्वंस में ध्वस्त नहीं होता। ऐसे बहुत कारण आएगा संसार में, लगेगा अब भगवान का प्रेम टूट जाएगा, भगवान से संबंध नहीं रह पाएगा। भक्तों के जीवन में ऐसा आता है बहुत, लेकिन अनेक बाधा विघ्नों के बाद भी जो राग समाप्त नहीं होता है, क्षण क्षण में नया नया होता रहता है, उसको अनुराग कहते हैं। जितनी बाधा आएगी उतना ही अनुराग और बढ़ता है, प्रेम बढ़ता जाता है। चाहे रोग आवे या स्वजनों का मरण आवे या राजनीतिक उपद्रव आवे या कुछ भी आवे या समाज विरोधी हो जाए, अनुराग तो बढ़ते हुए प्रेम को अनुराग कहते हैं। तो ऐसा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ रहा था, प्रवर्धमान अनुराग विशेष रूप से बढ़ रहा था। अनुराग क्यों बढ़ रहा था? भगवान की पूजा करने से। ये तृतीय में लिखा गया पुरुष परिचर्या तया, तया पुरुष परिचर्या, उस भगवान की पूजा को भगवती भगवान में प्रवर्धमान अनुराग, भगवान में अनुराग बढ़ रहा, क्योंकि पूजा करने में चिंतन हो रहा था। मैं कृष्ण को खिला रहा हूँ, मैं तुलसी दे रहा हूँ, जल अर्पित कर रहा हूँ, वो खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, तो कंद मूल को सुधार करके ठीक से करके धो करके अर्पित करना, जल देना, फिर और भी विविध प्रकार की पूजा मन ही मन करना। और कहीं घूमते थे तो वन के पुष्प को देखकर यही याद आती थी ये कृष्ण के योग्य पुष्प है, ये फल है, यह जल बहुत सुंदर है। ये हमेशा इसी चिंतन में रहते थे और ला करके पूजा करते रहते। बस पूजा की सामग्रियों का आहरण करना, संकलन करना और ला करके पूजा करना, 24 घंटे बस यही कार्य। और यह कार्य इसलिए करते थे कि इसमें उनको सुख मिलता था, आनंद मिलता था। जिस कार्य में मनुष्य को आनंद मिलने लगे तो उसे वो 24 घंटा करता है। इसका अर्थ है कि देह के धरातल से बिल्कुल ऊपर अप्राकृत स्थिति हो गई, देह के धर्मों से, देह की आवश्यकताओं से ऊपर उठ गए। भूख लगना, निद्रा में आना, प्यास लगना, सोना, ये सब देह के धर्म है। लेकिन जो देह से ऊपर उठ चुका है, भगवान की चर्चा में निमग्न है, भगवान की सेवा में निमग्न है, तो वह गुणातीत हो जाता है। तो भगवान में प्रतिक्षण अनुराग बढ़ रहा था, और उस बढ़ते हुए अनुराग से द्रुत हृदय, हृदय द्रवीभूत रहता था। द्रुत का अर्थ है चलने वाला, ढलने वाला, द्रवीभूत उसको कहते हैं, हृदय द्रवीभूत हो रहा था, बह रहा था, और इस कारण से हृदय शिथिल हो जाता था इनका हृदय। भगवान के प्रति इतना प्रेम बहता था कि हृदय शिथिल हो जाता था। हृदय शिथिल होने का मतलब है कि दैनिक कृत्यों में कोई रुचि नहीं रहती। दैनिक कृत्य का मतलब है कभी कभी नहाने में या खाने में या और भी क्रियाओं में कोई अनुसंधान नहीं रहता, भगवान की पूजा के ध्यान में डूबे रहते थे हमेशा। इसको हृदय शैथिल कहते हैं, हृदय शिथिल हो जाना। कोई याद दिलाए कि राजा श्री आपके प्रसाद का समय हो गया, तब याद होता है खाने का समय, प्रसाद पाने का समय, तो याद न आना इसको हृदय शैथिल कहते, शिथिलता है। विशेष रूप से पढ़ते हुए अनुराग के कारण यह दशा होती थी, और प्रहर्ष देगे न, और भगवान की पूजा से ध्यान से प्रहर्ष प्रकृष्ट हर्ष बहुत आनंद प्राप्त हो रहा था, हर्ष हो रहा था। उस हर्ष के कारण आत्मनी देह में आत्मा में उद्भिद्यमान रोम कुलक कुलक संपूर्ण शरीर में हमेशा रोमांच रहता था। रोम अंच, अंच का अर्थ होता है खड़ा होना, और रोम का अर्थ है रोमांच, शरीर का रोमांच, अंच रोमांच, हमेशा रोमांच रहता था। भीतर भगवान का चिंतन करते रहते थे, भगवान को अर्पित करते रहते थे, तो इस कारण से शरीर में हमेशा रोमांच रहता था। ये प्रेम के विकार, अष्टसात्विक विकार राजर्षि भरत के देह में उत्पन्न हो रहे थे। मतलब उस समय उनके सामने कृष्ण है, कृष्ण और राजर्षि भरत, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का स्वप्न में भी न कोई स्मरण है, चर्चा का तो कोई प्रश्न ही नहीं, किसी से भेद नहीं, कुछ नहीं। कभी कभी ऋषियों से इनका सत्संग होता है, वहां हरि क्षेत्र में रहने वाले ऋषियों से, लेकिन अधिकांशतः समय अविरत पूजा में लगे रहते थे, और यह पुलकावली शरीर में रोमांच हमेशा छाया रहता था। हम लोग इसका अनुभव किए हैं, कभी साल में एक आध बार रोमांच थोड़ा सा हो, वो भी 2-4 सेकेंड के लिए, लेकिन वह स्थिति कितनी महान है जबकि भगवान के प्रेम में हमेशा रोमांच है, उद्भिद्यमान रोम कुलक कुलक और आंखों में आंसू, और कंच प्रवृत्त प्रणय वाष्प निरुद्धा व लोक नयन, और कंठ्य उत्कंठा, जब भगवान की पूजा करते थे और ध्यान करते थे तो उत्कंठा अब बढ़ रही थी, दिन पर दिन उत्कंठा बढ़ रही थी कि कब कृष्ण की लीला में होऊंगा, कब उनकी सेवा करूंगा, कब उनके साथ रहूंगा, कब वो मुझे दिखाई देंगे, अब इस प्रकार की लालसा बढ़ती जा रही थी, इसको उत्कंठा कहते हैं। संस्कृत में इस शब्द का बड़ा महत्व है, वैसे शब्द की दृष्टि से इसका अर्थ है कंठ ऊपर करना, उत का अर्थ है ऊपर और कंठ का अर्थ होता है कंठ। जब हम किसी वस्तु की लालसा करते हैं, खास करके प्रतीक्षा करते हैं, जोहते रहते हैं, तो इसको उत्कंठा कहते हैं। कंठ को ऊपर करके हम जोहते, किसी व्यक्ति को जोहते हैं, किसी वस्तु को जोहते हैं, वो हमें कब मिले कब मिले, इसको उत्कंठा कहते हैं। खास करके रेलवे प्लेटफार्म पर खड़े होकर के लोग रेल के लिए उत्कंठित होते हैं, जानते हैं कि टाइम से आएगी, वो अनाउंस भी करते हैं, फिर भी उत्कंठा रहती है। प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर के कंठ को ऊपर करके देखते रहते, कब गाड़ी आ रही है। तो इस उत्कंठा के बहुत से स्वरूप होते हैं, या केवल उतनी ही मात्र उत्कंठा नहीं है गाड़ी जोहने वालों की तरफ, लेकिन शब्द का अर्थ यही है। उत्कंठा का अर्थ है बहुत घनीभूत लालसा कृष्ण की लीला में शामिल होने की, उनके साथ होने की, उनकी सेवा करने की, साक्षात पाद संवहन करना, चमर डुलाना, भगवान के लिए पंखा झलना, अब इस प्रकार की लालसा इतनी बढ़ रही थी, उस उत्कंठा से प्रवृत्त प्रणय वाष्प, प्रणय वाष्प प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे, हृदय आंखों में बह रहा है। प्रणय वाष्प कहते हैं प्रेमाश्रु, वाष्प मतलब अश्रु, प्रेम के आंसू इतने उमड़ रहे थे कि निरुद्धा व लोक नयन, इनके दोनों नेत्र अवलोक निरुक्त हो जाते हैं। पूजा भगवान की कर रहे हैं, कौन पूजा कब करनी चाहिए, कौन वस्तु अर्पित करनी चाहिए, इसको देख नहीं पाते थे, स्मरण नहीं कर पाते थे। आंखों में इतना आंसू बहता था कि वो देख नहीं पाते थे कौन वस्तु उठा रहे हैं। आंख में आंसू भर जाते हैं तो निरुद्ध अवलोक, देखना अवरुद्ध होता है। भगवत सफर जा और कंठ प्रवृत्त प्रणय वाष्प निरुद्ध अवलोक नयन, बहुत सुंदर शब्द है। उत्कंठा के कारण उत्पन्न हुए प्रेम के आंसू से आंखों की दृष्टि ढक जाती थी, कितना सुंदर शब्द है। और एवं इस प्रकार से पूजा करते रहते थे सर्वदा, रोमांच हो, हृदय गदगद हो, हृदय द्रवीभूत हो और आंखों में आंसू, और इस तरह से पूजा करना, भगवान की सेवा करना, अर्पित करना, आनंद से भरे हुए, ये बहुत दुर्लभ स्थिति है। ऐसे घर पर भी भक्त थे, लेकिन घर की अपेक्षा वन में 100 गुना भक्ति बढ़ गई इनकी, भगवान में प्रेम बढ़ गया। तो निज रमणा रूण चरणार बिंदा ध्यान परिचित भक्ति जोगे न परिप्लुत परमा लाभ गंभीर हृदय हृदावगार भीषण। निज रमण है भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, निज रमण है का अर्थ है जो अपने भक्तों को अपने सौंदर्य माधुर्य से रमाते रहते हैं। रमाना का अर्थ सुखी करना, तो स्वयं टीचर रमन टीचर। निज रमण का अर्थ जो अपने भक्तों को अपने प्रेम से परम सुख देते हैं, अपने सौंदर्य माधुर्य से सुख देते हैं, उनको निज रमण कहते हैं। अथवा निज रमण का एक अर्थ है कि भगवान के चरणारविंद अपने समान बस आप ही है, उसके समान दूसरा कोई नहीं, इतना सुंदर और रसमय चरण कमल दूसरा नहीं, कृष्ण जैसा सुंदर, कृष्ण जैसा रसिक, दयालु या समस्त ऐश्वर्यों से युक्त व्यक्ति कोई नहीं। इसलिए वो जितना सुख देते हैं अपने आश्रित को, अपने शरणागत को, उतना कोई नहीं दे सकता, इसलिए उनको निज रमण कहते हैं। राजर्षि भरत सब कुछ छोड़कर कृष्ण के लिए वन में आए हैं, तो कृष्ण इनको टॉप आनंद दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजर्षि भरत अपने स्वजनों को खो दिए, अपने राज्य को खो दिए, इसलिए निरानंद रह गए। सारा आनंद भगवान से निकल रहा है वास्तव में। जब हम कृष्ण के निकट हो जाते हैं तो वह सुख मिलता है, वह सुख मिलता है जो दुनिया का सारा ऐश्वर्य भी सुख नहीं दे सकता है। इसलिए निज रमण शब्द का प्रयोग किया गया है। अपने भक्त राजर्षि भरत को पूर्ण सुख भगवान दे रहे थे, आनंद में रख रहे थे। तो निज रमण के अरुण चरणारविंद के ध्यान से, अरुण चरणारविंद खास करके राजर्षि भरत की दास भावना है भगवान कृष्ण के प्रति, मैं इनका दास, इसलिए चरणों का ध्यान वे अधिक करते थे। अरुण चरणारविंदानुध्यान, अनुध्यान मतलब निरंतर निरंतर चरण कमलों का ध्यान आ रहा था। अरुण लाल लाल चरणों के तलवे दिखाई दे रहे हैं, तो अरुण चरण तल चरणारविंद, तो अरुण चरणारविंद का निरंतर ध्यान करने से, चिंतन करने से परिचित भक्ति योग। परिचित का अर्थ है सुदृढ़ पोषित भक्ति योग, यहां भक्ति योग का अर्थ प्रेम। कृष्ण के अरुण चरणारविंद का निरंतर ध्यान करने से भगवान श्री कृष्ण में प्रेम बहुत बढ़ गया। ये हमेशा प्रेम बढ़ने की बात है, परिचित भक्ति योग। चित चित का अर्थ होता है संकलन, इकट्ठा करना, और परिचित का अर्थ है और इकट्ठा करना, समृद्ध हो जाना। तो भगवान का ध्यान करने से भक्ति योग और समृद्ध हो गया, प्रेम बढ़ने बढ़ गया बहुत अधिक। और जब भगवान श्री कृष्ण में इस तरह अनुराग प्रेम बढ़ गया तो परिप्लुत परमालाद गंभीर हृदय हृदावगार भीषण। तो भगवान की भक्ति जो है वो हलादिनी शक्ति की वृत्ति है। तो जिस हृदय में प्रेम आ जाता है तो वह जीव, वह भक्त आनंद में डूब जाता है। और भक्त को दोनों को आनंद देती है, दोनों को सुख देती है, क्योंकि सुखमय जो एनर्जी है भगवान की, हलादिनी शक्ति है, प्लेजर पोटेंशियल, उसी की यह एक वृत्ति है। वृत्ति का मतलब स्वरूप, भक्ति हलादिनी शक्ति की वृत्ति है, इसलिए जहां ये रहती है तो दोनों को सुख देती है, विषयालंबन भगवान को कृष्ण को और आश्रयालंबन भक्त को, दोनों को सुख देती है। जैसे आग अगर एक बर्तन में रख दिया जाए तो बर्तन को भी उत्तप्त करेगा, वो अग्नि बर्तन को भी तप्त करेगा और पास में जो जाएगा उसको भी ताप देगा। तो इतना निर्विवाद है कि बर्तन को वो अधिक से अधिक उत्तप्त करता है और पास में आने वालों को भी ताप देगा लेकिन कम देगा। तो भक्ति भक्तों के हृदय में होती है, इसलिए भगवान से भी बढ़ करके भक्तों को अधिक सुख मिलता है। यह सब सिद्धांत है वास्तव में कि भक्ति कृष्ण के हृदय में नहीं है, वो भक्त के हृदय में रहती है। इस सुख से भगवान भी वंचित है, इतना यह दिव्य सुख है। इसी लोभ से भी चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। भगवान सोचे अपने धाम में कि क्या बात है कि राधिका इतना सुख में रहती है, हमसे कोटि कोटि गुना वो अधिक सुखी रहते हैं, या ब्रज के गोप या गौवे माता पिता ये सब इतना सुख में रहते हैं, इतना आनंद में रहते हैं, इसका क्या कारण है? क्यों नहीं कृष्ण बनना चाहते हैं, क्यों नहीं भगवान होना चाहते हैं? भगवान विचार किए तो उन्होंने देखा कि ये अधिक सुख ले रहे हैं हमसे, कि भगवान आनंद घन है, सच्चिदानंदमय है, लेकिन उन्होंने देखा कि हमसे अधिक आनंद ये ले रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हमें अपना आनंद लेना चाहिए, अपना सुख लेना चाहिए, तो राधा भाव को उन्होंने स्वीकार किया। श्री राधिका के भाव को लेकर के वे आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और अपनी साध पूरी की है, यह सुख लिए। तो यह जो सुख है भक्ति का, यह भगवान के लिए भी दुर्लभ है और तो दूसरे के लिए तो कहना ही। इसलिए बराबर आप देख रहे हैं कि आनंद में थे महाराज भरत, आनंद में थे, सुख में थे, परम निवृत्ति अवापर। और यहाँ कह रहे परिकृत परम आह्लाद, भक्ति हृदय में है तो वह भक्ति आनंदमय है, हलादिनी शक्ति की वृत्ति है, इसलिए वह उनके शरीर को मन को वाणी को सब कुछ को आनंदित कर रहे थे, विकीर्ण हो रहा था आनंद का। तो इसको आश्रय जाति का सुख कहते, भक्त के हृदय में भक्ति रहते हैं। तो इतना आह्लाद उत्पन्न होता था कि उनके गंभीर हृदय रूपी दह में इनकी बुद्धि निमग्न हो जाती थी, भीषण कार के बुद्धि निमग्न हो जाती थी। तो बुद्धि से फिर विचार नहीं रहता था, जब बुद्धि आनंद में मग्न हो जाती है तो कौन पूजा कब करनी चाहिए इसका ध्यान नहीं रहता। कभी कभी बुद्धि आनंद में इस तरह निमग्न हो जाती थी कि मान लीजिए पहले जो पूजा करनी है उसको भूल जाते थे, उसको बीच में करते थे, बाद में करते थे, ये ध्यान नहीं रहता था कि क्या कर रहा हूं। शरीर के स्वभाव के अनुसार पूजा करते थे, अर्पण करते थे, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता था कि क्या करना है, कब करना है। बुद्धि आनंद में निमग्न रहती थी, निमग्न परमानाद गंभीर हृदय हृदय उद्गार भीषण अवगार माने निमग्न हो जाती थी बुद्धि। भगवान की भक्ति करने पर कभी कभी ऐसा होता है भक्तों की उच्च दशा में इस सेवा का ध्यान नहीं रहता, उस सेवा से मिलने वाले आनंद में बुद्धि मग्न हो जाती है। तो इस आनंद को भक्त अपने जीवन में विक्षेप मानता है, अरे ये क्या हो रहा है। ऐसा भक्त के सामने सिंधु में लिखा गया है कि एक बार दारुक भगवान श्री कृष्ण के सारथी पंखा झल रहे थे कृष्ण को, तो पंखा झल रहे थे तो उनको यह आनंद आने लगा कि ओहो हमारा कितना सौभाग्य है, हमारा कितना सौभाग्य है कि मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। उनको इस सुख की इतनी अनुभूति हुई कि शरीर में कंप हो गया, शरीर कांपने लगा और कांपते कांपते हाथ कंपन हुआ तो पंखा नीचे गिर गया। इस आनंद के अनुभव से उस समय दारुक बहुत बुरा माने कि अरे क्या पागलपन मेरे मन में आ रहा है, क्यों मैं दूसरी बात सोच रहा हूं। ये जो भक्ति से ही उत्पन्न है, लेकिन उस भक्ति जनित आनंद को भक्त अपने जीवन में विघ्न मानता है, ये विघ्न हुआ। राजर्षि भरत भी यही मानते थे कि क्या हो रहा है, मैं कृष्ण की पूजा नहीं कर पा रहा हूं, हाय रे मेरी बुद्धि को क्या हो गया, मेरी बुद्धि कैसे खराब हो गई। चैतन्य महाप्रभु इसको कहते थे मैं पागल हो गया। प्रकाशानंद सरस्वती से बात करते समय वे ऐसा कहते थे। प्रकाशानंद सरस्वती ने भगवान से पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि आप नाचते क्यों हैं, सन्यासी होकर के तो भाव की तरह आप नाचते क्यों हैं, आपको कहीं एकांत में बैठ करके ब्रह्म चिंतन करना चाहिए, वेदांत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, लौंडे की तरह नाच रहे हैं और गा रहे हैं, रो रहे हैं, हाउ इस ये सन्यासी का काम नहीं है। उस पर भी आप हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं और हमने सुना कि काशी में आए हुए आपके बहुत दिन बीत गए लेकिन हमसे आप भेंट भी नहीं करते, हम आपके संप्रदाय के हैं, आचार्य हैं आपके संप्रदाय के, यहाँ पे भारती से दीक्षा लिया था केशव भारती से, इसीलिए स्वीकार है आप हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं, हमारे गुट के हैं, हम लोग तो कभी भी इस तरह डांस नहीं करते, तो आप क्यों नाच कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, गा रहे हैं, ऐसा भाव का काम ठीक नहीं। तो इस पर भगवान उत्तर दिए, प्रभु कहे सुनो श्रीपाद, इहार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांताधिकार, कृष्ण नाम जप सदा यही मंत्र सार। चैतन्य महाप्रभु कहे कि हमारे गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम कृष्ण नाम जपो बस तुम्हारे लिए यही सब। तो क्यों गाता हूं ये इसका तो उत्तर हो गया, अच्छा नाचते क्यों है, रोते क्यों है, तो इसका उत्तर देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जब मैं गुरु की आज्ञा से नाचने लगा, गाने लगा तो अपने आप रुलाई आने लगी, अपने आप नाचने लगा, मैं अपनी इच्छा से नहीं नाचता, मुझे पता नहीं चलता कि मैं नाच रहा या गा रहा, तो मैं पुनः गुरु जी के पास पहुंचा। केवा मंत्र दिला गोसाई केवा तार बल जपिते जपिते मंत्र कर ल पागल, फिर मैं अपने गुरु के पास जाकर पूछा गुरु जी कौन सा मंत्र दिए, क्या कर दिए कि जपते जपते मेरा मन पागल हो गया, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी कुछ कराता है। ये प्रकाशन मंत्री से बात हो रही, मैं पूछा अपने विषय में कौन सा मंत्र दिए, उल्टा मंत्र बता दिए क्या कि ये मन पागल हो गया नाच रहा है। तब मेरे गुरु जी ने कहा कि अरे बेटा यही तो इसका फल है, कृष्ण नाम जपने का कीर्तन करने का यही फल है, कृष्ण में प्रेम हो जाता है और कृष्ण में जब स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो भक्त नाचता है, गाता है, रोता है, यही तो जीवन है, यही तो अपना स्वरूप है। मेरे गुरु जी ने कहा और अपने स्टेटमेंट को कन्फर्म करने के लिए गुरु जी ने भागवत का श्लोक मुझे सिखाया एवं व्रता स्व प्रिय नाम कृत्या जाता अनुराग व्रतचित्त उच्च हसत कथोर वितरण की गायन उन्माद व नृत्य की लोक बाह्य। मेरे गुरु जी ने हमको यह श्लोक सिखाया, मैं बहुत मेहनत करके इसको याद कर लिया भगवान चैतन्य महाप्रभु बता कि जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो भक्त उन्माद व पागल की तरह, भूत से अविष्ट व्यक्ति की तरह नृत्य लोक बाह्य, वो नाचता है लोक बाह्य, लोगों के नियम से उनकी धारणाओं से बाहर होता है, वो देखते ये क्या हो गया ये पागल क्या हो गया। तो हमारे गुरु जी ने बताया कि यही वास्तविक फल है, इसलिए अब हम तो गुरु की बात मान करके गाते हैं और फिर नाचते हैं जो कुछ भी होता है, ये तो बात है बाद में प्रकाशानंद भी इसी ग्रुप में आ गए थे वो नाचने लगे, गाने लगे अपने शिष्यों के साथ, सन्यासियों के साथ। तो इस तरह भक्त के जीवन में यह स्थिति आती है कि वह एक लोक बाह्य और पागल की तरफ हो जाता है, ये बुद्धि काम नहीं करती है। तो राजर्षि भरत की यह दशा हो गई है, बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए ताम अपि क्रियमाणं भगवत सपर्या न सस्मारम, इसलिए जो पूजा करते थे भगवान की सपर्या पूजा करते थे तो क्रियमाणं भगवत सपर्यम अपि चालू रखते थे, क्रियमाण पूजा को भी न सस्मार भूल जाते थे, याद नहीं रखते। क्रियमाणं का अर्थ है कि चालू रखे हैं उसको भी भूल जाते थे, ये बहुत ऊंची स्थिति का बताते हम चालू किए, मान लीजिए कोई भक्त शंख बजाया, अगरबत्ती दिखाया, इसके बाद चुपचाप खड़ा हो जाए, मान लीजिए बुद्धि ऐसी मग्न हो जाए उस आनंद हृदय में सरोवर में, ध्यान ही न रहे, ऐसी स्थिति बहुत दुर्लभ है वास्तव में। मेरे कहने का क्या तात्पर्य नहीं किसी पुजारी को ऐसी नकल करनी चाहिए लेकिन यह स्थिति आए भी जीवन में यदि हम शुद्ध भजन करते रहे तो ये फल नहीं है। इस तरह से पूजा में रुकावट आना यह फल नहीं है, लेकिन भगवान में प्रेम हो जाना ये फल है। पूजा छोड़ते नहीं थे, पूजा करते थे, लेकिन कभी कभी पूजा का स्मरण नहीं आता था, व्यतिरेक हो जाता था, उल्टी पूजा होती थी। जैसे स्नान कराने से पहले ही फल अर्पण कर देना, तो यह व्यतिरेक हो रहा है। तो इसके कारण राजर्षि भरत का हृदय जो था वो बड़ा दुखी होने लगा। फिर क्या हो रहा है, सही हो रहा था, वही फल है, यही तो परम फल, पंचम प्रसाद, वही फल था वास्तव में, लेकिन उसको विघ्न मान रहे। तो हम इसलिए अब वे इस तरह की पूजा तो कर ही रहे थे, लेकिन जब बार बार विघ्न आने लगा पूजा में, तो उनके मन में आ गया कि हमारी बुद्धि निश्चित ही पागल हो गई, खराब हो गई। उस आनंद को, प्रेमानंद को, भक्ति के सुख को वे विघ्न मानने लगे, इसलिए वे विशेष मंत्र का जप करने लगे अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए। यह गायत्री का सहोदर मंत्र है, इसलिए वे एक विशेष मंत्र का जप करने लगे अपनी बुद्धि को ठीक करने के लिए। यह गायत्री का सहोदर मंत्र है। इस श्लोक में गायत्री का अर्थ दिया गया। तो गायत्री में भी हम लोग है भगवान से मांगते हैं धियो जो न प्रचोदयात, जो हमारी बुद्धियों को ठीक करे, मतलब प्रेरित करे, अपने में लगा लें। गायत्री मंत्र का यही सार अर्थ है कि भगवान हमारी बुद्धि वृत्तियों को भी अभव वचन में है प्रकृष्ट रूप से प्रेरित करें, अपने तरफ लगा लें। हमारी जो बुद्धि संसार में लग रही है, हे भगवान ऐसी कृपा करो कि हमारी बुद्धि आप में लग जाए, यही है गायत्री मंत्र में प्रार्थना। महामंत्र भी प्रार्थना है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। गायत्री में भी प्रार्थना है, गायत्री का अर्थ ही होता है गाने पर जो प्राण करे, जप करने पर जो हमारा प्राण करे, संसार से हमारा हमारे मन को उठाकर भगवान में लगा दे, उसको गायत्री करो। यहाँ प्रश्न होगा तब गाना चाहिए गायत्री, यहाँ गाने का अर्थ मरमर करना, केवल गुनगुनाना या मानसिक जप करना, सब जगह ये कहीं अर्थ नहीं होता है गाने का। तो गायत्री को अर्थ गायत्री बुद्धि को ठीक करने के लिए कही जाती है, लेकिन राजर्षि भरत यहाँ पर गायत्री का जप कर रहे थे। इस मंत्र का जो श्लोक आ रहा है भगवान से मन को निकालने के लिए, ऊर्जा हो रहा है भगवान से अपने मन को हटाने के लिए जब कर रहे थे, मन हटा करके उनकी पूजा करे। गोपी जन किस प्रकार का योग सीखती है, कल जो चेष्टा करते हैं, योगाभ्यास करते हैं कि कृष्ण से मन को हटा करके कुछ घर का काम धंधा करे। तो चैतन्य चरितमृत में लिखा गया इतना कृष्ण में मन लगा रहता था उनकी बांसुरी में सौंदर्य में कि घर का काम धंधा सब पड़ा रहता, भोजन बनाने का समय आ गया 9-10 बज गया तो घर अभी चूल्हा भी नहीं जला, तो रोज लोग गाली देते थे घर वाले पगली हो गई क्या हो गया, और वो बेचारी तो कृष्ण के बांसुरी पर लट्ठू हो चुकी है, और ध्यान आता था तो भोजन बनाना है स्वजनों के लिए, ये करना है वो करना है, और भी बहुत से काम अपना स्नान खान पान श्रृंगार सब करना सब भूल जाए। इसीलिए एक योगी को दुर्वासा जी को एक बार अपने यहाँ बुला करके और उनसे प्रार्थना की कि गुरु जी हमको योगाभ्यास दिखाइए, उन्होंने पूछा कि क्या करने के लिए, चित्त को कृष्ण से हटाने का उपाय बताइए। तो दुर्वासा जी हंसते थे चूंकि वो एक भक्त है, अम्बरीश उपाख्यान के बाद परम भक्त हो गए, तो वो भक्त है तो वो हंसते थे और बताते थे ठीक है चलो ध्यान करो निकालो मन को। तो निकालने के लिए पहले कृष्ण के शरीर पर ही मन ले जाना है। तो ले जाने के बाद जब ही बैठती थी आंखें बंद करती थी तो कृष्ण का और गाढ़ ध्यान होने लगता है। तो योग काम नहीं करता, वासुदेव परम योगम, योग का अर्थ है कृष्ण में मन लगे, कृष्ण से मन हटाया गए तो कुयोग है, योग हुआ नहीं वो सफल नहीं हो सकती। और न दुर्वासा जी योगा क्लास देकर सफल हो सके। और बढ़ता जाता राजर्षि भरत भी इसी तरह से सोचते थे कि कृष्ण से मन हटा लो, क्या हो गया, मन पागल हो गया, भगवान की पूजा नहीं कर रहा है, इसमें विघ्न होने लगा। तो भगवान के चिंतन के आनंद से सेवानंद बढ़ करते हैं, यह अभाव है। भगवान की भक्ति से सुख मिलता है भक्त को, लेकिन वह सुख को भोगना नहीं चाहता, सुख के लिए ललायक नहीं होता, वह कृष्ण की सेवा के लिए ललायक होता है। कि हमारा मन, हमारा हाथ, हमारी आंख, हमारा चरण, सब कुछ आपकी सेवा के काम में आ जाए, केवल आनंद के अनुभव में हम डूबे न रहे। यद्यपि सेवा हम करेंगे तो आनंद आएगा ही, वो सेवा का ही आनंद था, लेकिन फिर भी वो सेवा का आनंद सेवा में विघ्न पैदा कर रहा है, इसलिए अपेक्षित नहीं। बहुत उत्कृष्ट वस्तु है, इसलिए उसको विघ्न मान दे। इत्थम धृत भगवत व्रत ऐणे याजिन वाशसा अनुसमनाभिषेकाग्र कपिशे कुटिल जटा कलापेन च विरोचमान सूर्यचा भगवंतम हिरण्मय जिहाने सूर्य मंडले अभी प्रतिष्ठा एक उच ओ रज सबो देव से भर्गो मन से दम जजाना श्वेत साद पुनरावेश चे हंसम गृभारिंगिरा। ये जो अंतिम श्लोक है इसका भी जप करते थे बुद्धि को ठीक करने के लिए। इस प्रकार भगवत व्रत धारण करके राजर्षि भरत बहुत सुंदर लगते थे, विरोचमान। जब तो व्यक्ति भगवान की पूजा में लगता है, भक्त हो जाता है, तो वह विशेष रोचमान बहुत सुंदर लगता है। राजर्षि भरत विशेष रूप से और बाहरी शरीर से भी सुंदर लगते थे। ऐणे अजिन वासता, वास वस्त्र को कहते, वस्त्र क्या पहने थे, ऐणे अजिन, एर कहते हैं मृग को, और ऐणे का अर्थ मृग का, अजिन मतलब चर्म, मृग चर्म पहनते। वन में फैंसी क्लॉथ नहीं थे तो वहां मृग चर्म पहनकर रहते। ये सब फालतू चीजें हैं, वास्तव में जीव के लिए कोई जरूरी नहीं है, केवल लज्जा ढकने के लिए वस्त्र चाहिए। तो मृग चर्म पहन करके और तीनों समय सवेरे दोपहर संध्या के समय अभिषेक करते थे, स्नान, अभिषेक करते थे, स्नान, वो स्नान करते रहते थे, और स्नान करने से उनकी जटाएं आर्द्र रहती थी। अब जटा है तो सवेरे स्नान किए तो दोपहर आते आते भी वो आर्द्र रहता है, जटा आर्द्र, कपिस पीली पीली जटाएं हो रही थी, और कुटिल कपिस, कुटिल कपिस कनक कपिसम वास, भगवान कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, तो राजर्षि भरत की कुटिल जटाएं जो फंस गई थी, जटाएं चढ़ी चढ़ी जटाएं, जटा कला के उसे बहुत सुंदर लगते थे। कभी कंघी नहीं किए, कभी हेयर केयर नहीं लगाए, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर थे। जटा कला पे मृगचर्म पहन करके और जटा धारण करके बहुत सुंदर लग रहे थे। सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं इस भक्त का, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है उसका ध्यान सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, यह भक्त की स्थिति। तो ऐरे अर्जुन वस्त्र से और अनुसमन अभिषेक आर्द्र कपिश कुटिल जटा कलापे न च विरोचमान, बहुत सुंदर लगते हैं। कदाचित उस समय अगर स्टूडियो होती, फोटोग्राफी होती, तो राजर्षि भरत का फोटो आज रहता हम लोगों के सामने। ऐसे भी भक्त सुंदर लगते हैं, लेकिन जब वो भगवान की पूजा में लगे हो उस समय उनका फोटो खींचा जाए तो ये बहुत अच्छा है। हम हाँ तो खड़ा हो करके फोटो खिंचवाते हो तो बनावटी हो जाता है। भगवान की पूजा करते समय, कथा कहते समय, या आप सुनते समय, सेवा करते समय जो फोटो लिया जाता है, वो सब भाई यही राजर्षि भरत के देह पर श्रृंगार, मृगचर्म और मृगचर्म केवल कमर में पहने हैं, बाकी कोई कुर्ता आदि नहीं, कुछ नहीं, और जटा विरोचमान विशेष रोचमान। तो सूर्य के उगते समय उज्जिहाने सूर्य मंडल है, उज्जिहाने सूर्य मंडल है, उज्जिहान जिहान शब्द को ही विहान करते हैं हिंदी में, जिहान शब्द है। उस जिहान जब सूर्य उगते हैं तो उस सूर्य मंडल में भगवान नारायण की पूजा करते थे। ध्यान रहे, हम लोग जो सूर्य को नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार का मतलब है कि सूर्य मंडल है, सूर्य मंडल में हम भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, वही आराध्य है। प्रभासनी शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा में मैं ही प्रकाश हूं, तो बुद्धि को ठीक करते हैं भगवान। इसीलिए उगते हुए सूर्य मंडल में सूर्यर्चा, सूर्यर्चा द्वारा भगवंत पुरुषम हिरणमय उपतिष्ठ, हिरण में भगवान पुरुष भगवान विष्णु की आराधना करते हुए यह कहते हैं। यह पूजा से भिन्न उपासना है। भगवान की पूजा में जो आनंद मिल रहा था उसको विघ्न समझ कर बुद्धि को ठीक करने के लिए आप एक नए तरह से भी चालू किए। पूजा तो करते ही थे लेकिन सवेरे सवेरे बुद्धि को ठीक करने के लिए भगवान सूर्य के मंडल में भगवान विष्णु की आराधना करते थे। ऐसा नारायण रह सर सुजा संसन निष्ट केजूरवा मकर कुंडलवान की हारी हिरणमय बपुर धृतशंख चक्र ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती। सविता के सूर्य के मंडल के बीच में भगवान विष्णु का ध्यान करने चाहिए, उनके मंडल के बीच में, और भगवान का प्रकाश ही आ रहा है हमारे पास। सूर्य में अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं मेरा प्रकाश है सूर्य में। प्रभा अपनी शशि सूर्य है, शशि और सूर्य में मैं प्रभा हूं भगवान का। तो सूर्य मंडल के बीच भगवान रहते हैं। कैसे? केयूरवान, केयूर पहने हैं, मकर कुंडल वान किरीट, किरीट धारण किए हैं, कुंडल पहने हैं, और उनका हिरणमय बपू है, प्रकाश में चमकता हुआ धृतशंख चक्र, शंख चक्र धारण किए हैं, हारी बहुत मूल्यवान हार लगाए हैं। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, सूर्य के मंडल के बीच में भगवान सूर्य का ध्यान, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। नारायण रहो शब्द दिया गया, नारायण ध्यान के विषय है सूर्य मंडल में। तो उगते हुए सूर्य को जल देते थे नारायण को, और यह मंत्र पढ़ते थे अपने को ठीक करने के लिए। परो रज सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेत साध पुनरावेश चस्ते हंसं गृधानं लृषभृङ्गिरामि महा। इमः इस तरह से इसका अन्वय, सवितुर्देवस्य भर्गः इमः, ये एक वाक्य। इमः का अर्थ है ईर्गतौ, गति के अर्थ में इन शब्द का प्रयोग होता है। इमह का अर्थ है शरणम गच्छेम, मैं शरण ले रहा हूं। किसकी शरण ले रहा हूं? सविता के, देव के हर्ग का शरण ले रहा हूं, मतलब भगवान विष्णु के तेजोमय रूप की मैं शरण ले रहा हूं, वे मेरी बुद्धि को ठीक करे, मैं शरण ले रहा हूं। भगवान विष्णु को सविता कहते हैं। सविता कहते सव शब्द दंत्य सव, सव का अर्थ प्रसव शब्द जैसे लगा रहता है प्रसव, तो प्रसव का अर्थ है पुत्र उत्पन्न करना, कुछ उत्पन्न करने, इसको प्रसव कहते हैं। तो सव शब्द सव का वही अर्थ है, सव मतलब जन्म देना। तो भगवान विष्णु ने इस विश्व को उत्पन्न किया है, सबको जन्म दिया है, और सबके जीवन की आवश्यकताओं को भी उन्होंने पैदा किया है, भूमि जल वायु अग्नि, और यहाँ तक खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं, कपड़ा लत्ता सब कुछ वो पैदा किए, सबको जिला रहे, सबको जन्म दिए, इसीलिए उनको सविता कहते हैं। सविता का अर्थ जन्म देने वाला, प्रसव करने वाला। अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रभव, गायत्री मंत्र में सवितु शब्द आया है, उसका अर्थ है सविता का, सविता के भर्ग का हम ध्यान कर रहे हैं। क्यों ध्यान कर रहे हैं? भगवान का वह तेज मय रूप हमारे बुद्धि को ठीक करे। और तो कथा के साथ साथ गायत्री का अर्थ भी खुलता जा रहा है। तो सविता के भर्ग का, भर्ग की हम शरण लेते हैं, तो भगवान विष्णु को सविता कहते हैं। ध्यान रखना चाहिए, मैं इस जगत को प्रसव किए, जन्म दिए, तो प्रसव करने में हो बहुत नहीं है कि वे अपने गर्भ से प्रसव किए हैं, उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है और कमल से ही सारा विश्व जन्म लेता है। इस दृष्टि से भी प्रसव है, यह सविता है। और देव, देव का होता है परम प्रकाशमान या परम आराध्य। परम आराध्य परम प्रकाशमान भगवान विष्णु के तेजोमय रूप का हम ध्यान करते हैं। तो रूप शब्द न देकर के भर्गह शब्द क्यों लिया गया है? भर्गह शब्द का अर्थ होता है भूंज देने वाला, जला देने वाला। भगवान का वह रूप इतना प्रभावशाली है, यदि हम उसका ध्यान करते हैं तो माया और माया के कार्य को नष्ट कर देता है, हमारे संसार बंधन को जला देता है, इसलिए उसको भर्गह कहते हैं। भजनम भव बीजन, जहां कृष्ण कहा ना है माया अधिकार, कृष्ण का वह रूप ऐसा है उसका यदि ध्यान किया जाए, कीर्तन किया जाए तो माया समाप्त हो जाती, इसलिए उसको भर्गह कहते हैं। चित शक्ति चिन्मय, अच्छा उसकी विशेषता बता रहे हैं भर्ग की। वो भर्ग कैसा है, भगवान का वह रूप कैसा है? परो रज, पर मतलब अतीत और रज मतलब रजोगुण, माया से परे है, रजोगुण से परे है। ये जब वो रजोगुण से परे है तो इसका मतलब तमोगुण उसमें है ही। अब जिस सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण नहीं रहते हैं उसको विशुद्ध सत्व कहा जाता है। इस जगत में जो सत्वगुण है वो हमेशा रजोगुण तमोगुण से विद्ध रहता है, कभी शुद्ध हो नहीं सकता, केवल वैकुंठ में विशुद्ध सत्व रहता है। तो परो रज का अर्थ है विशुद्ध सत्व, प्रकृति मंडल से पार। भगवान का वह जो रूप है नारायण का, वह प्राकृत जगत की वस्तु नहीं है, प्राकृत नहीं है, उसको परो रज का एक विशेषता भगवान के रूप की। और दूसरी जात वेद, जातम धनम कर्म फलम जस्ना का कर्म फल कर्म फलदम इत्यादि। तो गायत्री में ओम भूर भुवः स्वः ये तीन पहले बोला जाता है, उसी शब्द की व्याख्या यहाँ पर है। जात वेद, वेद का अर्थ होता है धन, वेल्थ संस्कृत। जात का अर्थ जिनके कृपा से स्वर्ग मिलता है, या भू स्व आदि की जो संपत्तियां हैं वो तो भगवान की कृपा से मिलती है, उन्होंने उत्पन्न किया है और वे यज्ञ आदि की विधि बताए हैं, तो उनकी कृपा से कर्म फल मिलता है, वही कर्म फल देते हैं, स्वर्ग देते हैं या भू भूआ स्व। इस पृथ्वी पर भी जिनको कुछ धन मिला है और नहीं कुछ बंबई में या कहीं भी, वो भी भगवान का दिया हुआ है। भू भूआ स्व, तो भूआ के अंदर सारे सारा धन है स्वर्ग के अंदर और पाताल के अंदर। जात शब्द है, जात वेद शब्द इसको बताता है, तो भगवान कर्म फल देने वाले मन। अच्छा, किस तरह के विष्णु हैं, सविता है, किस तरह जगत को उत्पन्न किए हैं, तो उसी को इस श्लोक में बता रहे हैं। यह मनसा एवं इदम जजान, जिस भगवान ने मन से ही इदम जजान इसको जन्म दिया है, जजान में जन्म दिया, ससर्ज केवल मन से उत्पन्न कर दिया इस विश्व को। यह मनसा इदम जजान, जिन्होंने केवल संकल्प मात्र से इस विश्व को उत्पन्न कर दिया है। श्रीमद् भागवतम में यह वाक्य बार बार आया, जो लीला से ही विश्व की सृष्टि करते हैं, संकल्प से ही सृष्टि करते हैं। इसके ठीक विपरीत हम लोगों को देखना चाहिए कि संसार में कोई भी व्यक्ति कुछ सृष्टि करता है तो वह बहुत प्रयास करके करता है और दूसरे की वस्तु से। तो इतने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनके पास कितने ट्रक से ट्रक सामान है, क्या क्या मशीनें हैं, बहुत प्रयास करते, बहुत दिनों में, महीनों में, वर्षों में जाकर के एक बिल्डिंग खड़ा करते हैं। कि कोई ऐसा इंजीनियर आता जो केवल संकल्प करता और बंबई जैसा नगर खड़ा है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो बंबई जैसा नगर छोड़ दीजिए, अपने लिए एक रूम केवल संकल्प से पैदा कर लें, ऐसा नहीं। इन मनुष्य जब विकास करता जाता है तो थोड़े से प्रयास से ही वो सृष्टि कर सकता है। जैसे बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं तो शरीर से कम काम करते हैं, केवल खून से बहुत काम करते हैं। तो बहुत छोटे दर्जे का आदमी जब हाथ लगाएगा, पैर से काम करेगा, तब थोड़ा काम कर सकता है। कुछ लोग केवल साइन कर देते हैं, बहुत काम है, उनके साइन पर बहुत काम हो जाता है। और कुछ लोगों के बोलने से बहुत काम हो जाता है, ज्यादातर शरीर से काम करने पर तब होता है, लेकिन भगवान ऐसे हैं कि केवल संकल्प मात्र से सारे विषय होते हैं। श्री हरिथा गए मन से एकदम जजान, मनसा इदम जजान, मन से इस विषय को पैदा करते हैं। आज के युग में भगवान के विषय में बहुत बहुत विवाद है, इसीलिए इन वाक्यों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को भगवान मत स्वीकार कीजिए यदि वो उसने मन से कुछ सृष्टि नहीं किया। कम से कम यह कहेगा अपने लिए फ्लैट मन से बना लो, तब हम मानेंगे कि कुछ गुण तुमने भगवान का आ गया। कोई बाहर का उपकरण नहीं था, कोई भूमि नहीं थी उस समय। उपनिषद कहता है उस समय भूमि नहीं थी, जल नहीं था, न ब्रह्म थे न शिव थे, कोई सहयोगी नहीं था, केवल नारायण थे, लेकिन उन्होंने संकल्प से सबको उत्पन्न कर दिया, सृष्टि कर दी। कहां से सब समान है? ये पहाड़ भूमि समुद्र ये सब मैटर कहां से आया? विष्णु से, उनके नाभि से सब कुछ निकला और संकल्प मात्र से सृष्टि हो गई। तो मनसा या एकदम जजाना, ये भगवान की विशेषता है। और पुनः अदह आविष्य, अदह मतलब इसमें, उस मन से इस विश्व की सृष्टि करके पुनः अदह आविष्य, पुनः इसमें भी प्रवेश किए। जितने जीव हैं उतनी संख्या में बनकर भगवान प्रवेश करते हैं। तो कितने जीव हैं इस ब्रह्मांड में? अनंत अनंत, और ब्रह्मांड भी अनंत कोटि है। तो अनंत अनंत जीवों के हृदय में अनंत रूप से अपने को प्रवेश कराते हैं। इन शब्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। लोग तुरंत कह देते हैं हमारा गुरु भगवान है या तुम्हारा गुरु भगवान है, ये हरे भगवान दूसरे हैं, भगवान दूसरे हैं, गुरु कभी भगवान नहीं होता, वो भगवान का दास होता है। अन्यथा वो कहां कहां प्रवेश किया, उसी के पैची में से कोई चेला चुरा ले तो उसको पता नहीं चलता, और वो प्रवेश कर गया, विष्णु हो गया। अगर तुम ऐसे ऐसे गुरु भक्त शिष्य से पूछते हैं किससे दीक्षा ली है, किसके शिष्य हो, पता लगता हो, कहता है आपसे, अरे बाप रे। लेकिन जब पूजा करनी होगी तो हमारा गुरु भगवान ये दर्शन है। भागवत पढ़ करके भगवान और जीव में क्लियर अंतर समझना चाहिए। भगवान किसको कहते हैं? मन से सृष्टि किया, सब में प्रवेश किया, सर्वस्व चाह हम हृदय सन्निवेश कर, सर्वस्व शब्द भगवान कह रहे हैं, एक भी जीव बाकी नहीं है जिसके हृदय में भगवान नहीं। सर्वस्व चाह हम हृदय से सन्निवेश कर, ईश्वर सर्वभूता नाम कैसे हृदय, ईश्वर सर्वभूता नाम तो सबके हृदय में सर्वभूता में भगवान जब भी सब बोलते हैं तो सर्व लगा रहे हैं। ये सर्व पर जरा ध्यान देना चाहिए। हम तो अपने अलावा दूसरे एक कभी हृदय में नहीं है कि नहीं, एक कभी हृदय में नहीं। कभी कभी तो प्रेम से भले किसी का चिंतन कर ले तो उसको हृदय में है, लेकिन वो तो मनोमय है, वास्तव में वो नहीं है। लेकिन भगवान वास्तव में सबके हृदय में, मत स्मृति ज्ञान मोहनम च, तभी भगवान सबके हृदय में है, वही बुद्धि देते हैं। तो राजर्षि भरत इसीलिए भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबके हृदय में हैं, हमारी बुद्धि को ठीक कर दीजिए, हमारी सेवा चलती है, मैं आपकी सेवा करता रहा, हमें पता नहीं कौन सा आनंद नाम का ये प्रेत हम पर चढ़ रहा है, ये पिशाच चढ़ रहा है, हमको सेवा का योग्य नहीं रख रहा है। बताइए, प्रेमानंद को भी गाली दिया जा रहा है, इसको पागलपन समझा जा रहा है, इतनी ऊंची स्थिति। तो भगवान इसमें प्रवेश करते, और प्रवेश करके करते क्या है? गृद्धाणम हंसम सुरेतसा चष्टे, चष्टे का अर्थ देखते रहते हैं, प्रेरित करते हैं। सुरेतसा रेत का अर्थ होता है चिच्छक्ति, अपनी दिव्य स्पिरिचुअल पोटेंसी से भगवान चुप्त रहते हैं समस्त जीवों के हृदय में, और विश्व को भी देखते हैं। कथम भूतम गृद्धाणम हंसम, गिद्ध बने हुए हंस को देखते रहते। हम लोग वास्तव में हैं हंस, कृष्ण के अंश हैं, ममय अंश जीव लोग के जीव भूत सनातन, लेकिन हम हो गए हैं गिद्ध। विशेषता दुर्विषयाधिकांक्षंत विस्तार, हमें कृष्ण की इच्छा करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम उनकी माया शक्ति द्वारा रचे हुए दुर्विषयों की तरफ दृष्टि रखते हैं, इसीलिए गृध कहा गया है। न गृध सशुद्धनम गृध्राणम, गृध्राण का अर्थ कांक्षन पर, जीव हमेशा माइक पदार्थ पदार्थों की इच्छा करता रहता है, इसलिए उसको गिद्धारण कहा जाता है, हमेशा आकांक्षा। जैसे गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है आकाश में, लेकिन उसकी हमेशा इच्छा रहती है कहीं मांस मिले, पृथ्वी पर मरे हुए पशुओं के मांस की तरफ दृष्टि रहती है। गिद्ध हमेशा आकांक्षा रहती है। गिद्ध जो ऊंचा उड़ते हैं तो वहां से देखते रहते हैं, गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध के पास बहुत दूर दृष्टि होती है, बहुत दूर तक देखता है, तो दुर्विषय चाहता है, मांस का टुकड़ा चाहता है। तो इस संसार में भी जीव भले वैज्ञानिक हो जाए या फिलोसफर हो जाए, लेकिन इच्छा क्या है? दुर्विषय, कुछ रूप रस गंध खान पान मिल जाए, बस इसी के लिए कांचन। तो जो जीव इसमें गिद्ध बन गए हैं परंतु है हंस, उनको हंस बनाने के लिए भगवान सबके हृदय में रहते हैं, देखते रहते हैं क्या क्या है, सब खान पान कर रहे हैं, और तो हंस को और चाहते हैं कि हंस हो जाए, परमहंस हो जाए। लेकिन आजकल गिद्ध लोग भी अपने नाम में परमहंस जोड़ जाते हैं। अभी खान पान भी शुद्ध नहीं हुआ, प्याज लहसुन भी खाते हैं और उनके नाम में परमहंस टाइप की जुड़े। मैं झूठी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोगों को देखेंगे उनके नाम में परमहंस शब्द है, लेकिन खैनी खाते हैं, सूती खाते। अभी मैं देखा परमहंस शब्द लगा हुआ एक व्यक्ति में था, और खबर मिला वो सन्यासी है, परमहंस है, लेकिन अभी उन्हें स्त्री की कामना। आज ही हमें ऐसा मिला। तो इस तरह से परमहंस शब्द का कुछ अर्थ होता है। परमहंस का अर्थ है जो केवल कृष्ण को पकड़ चुका है, ग्रहण कर चुका है, और इस तुच्छ संसार को छोड़ चुका है, इसको नहीं भोगना चाहिए, उसको परमहंस का हंस का, और हंसों में जो श्रेष्ठ है वो परमहंस है, परमहंस। आज के युग में तो प्रेस स्वतंत्रता है, कुछ भी छाप लो, अपने नाम में कौन बोलने वाला है, सरकार भी कुछ केयर नहीं करती है, तो अपने को भगवान भी कोई छपवा ले तो नहीं कहने वाली क्यों कारण होगा, शायद कोई अपने को राष्ट्रपति लिख देगा तो उस पर रिएक्शन हो सकता है ना। लेकिन भगवान कहने पर कोई उन्हें छोटा पोजीशन अगर अपने नाम में लगा दे तो उसको दंड दिया जा सकता है, लेकिन भगवान शब्द लगा ले तो नहीं। देखिए क्या युग आ गया, भगवान अनंत महात्म्य वाले, अनंत महिमा है, लेकिन उनका टाइटल कोई भी लगा सकता है, और इन तुच्छ जीवों का टाइटल आप नहीं लगा सकता, भूल करके भी नहीं लगा सकता। एक बार एक व्यक्ति बोल रहा था वृंदावन में, सवेरे अनाउंस कर रहा था हमारे मंदिर में, एक ब्रह्मचारी को हिज ग्रेस की जगह हिज होलीनेस कह दिया उसी पर कई लोग हाथ ऊपर किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अरे बाप रे बाप क्या हो गया भैया। तो हो गया, उसके मुख से निकल गया, कहना चाहिए था हिज ग्रेस, लेकिन उसको आ गया हिज होलीनेस। तो हिज का अर्थ है भगवान का, कृष्ण का। हमारे समाज में वास्तव में भगवान की कृपा की मूर्ति होना ही अच्छा है, और भगवान की पवित्रता सन्यासी में उतरती है, हिज होलीनेस। सन्यासी में भगवान की पवित्रता है, और ब्रह्मचारी और गृहस्थ में भगवान की कृपा, हिज ग्रेस। कोई खास अंतर नहीं है वास्तव में, बल्कि अगर तत्व दृष्टि से देखा जाए तो हिज ग्रेस श्रेष्ठ है। तो सन्यासी में भगवान की पवित्रता है, कृपा उपा नहीं। तो कृपा श्रेष्ठ है वास्तव में। मैं तो विरोध में बात कह रहा हूँ, व्यवहार चलाने के लिए आवश्यक है जो टाइटल जिसको दिया जाए वो वही कहे, लेकिन वास्तव में हिज ग्रेस लगाने पर ब्रह्मचारी और गृहस्थों को प्रसन्न होना चाहिए, ये उचित टाइटल। श्रील प्रभुपाद जी ने विदुर जी के लिए भागवत के प्रपाठ में हिज ग्रेस लिखा, एक बार मैं पढ़ा हिज ग्रेस विदुर जी के, और प्रभुपाद जी को भी कहा जाता है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, और दूसरे सन्यासी को कहा जाएगा श्री कृष्ण पवित्रता मूर्ति। ये भी ठीक है, लेकिन पवित्रम परम भगवान से भगवान कृपालु है या ज्यादा अच्छा, कृपा वैष्णव में करती। जो कुछ दियो मेरे कहने का आशय यह है कि हमें वही टाइटल स्वीकार करनी चाहिए जो हमारे स्वभाव के अनुकूल हो। यदि हम गिद्ध हैं तो हमें परमहंस नहीं लेना चाहिए टाइटल। तो ऐसा अगर किसी के नाम में लगा दीजिए परम गिद्ध महाराज तो रंज हो जाएंगे। अष्टोत्तर शत श्री श्री परम गिद्ध महाराज की जय। तो कम से कम जो खान पान शुद्ध नहीं रखे हैं, भगवान का जप भी नहीं करते, कीर्तन नहीं करते हैं, अपने को ही भगवान कहते हैं, उनमें तो की टाइटल जरूर जोड़नी चाहिए। उनमें उनको तो यही टाइटल सूट करेगा, वास्तव में स्वरूप के अनुकूल टाइटल। तो हम लोग इस जगत में गिद्ध बन गए, भगवान हमारी दशा को देखते रहते हैं, चाहते हैं कि हंस बने, इसलिए दोनों शब्द दिए गए हैं, गृध्राणम हंस, गिद्ध बने हुए हंस को प्रेरित करते रहते हैं, पालते हैं, सिखाते हैं, गीता का उपदेश करते हैं। सर्व धर्म परिपेज नाम अपन शरण, इस जगत में अवतार लेते हैं। और नृशब इंगिराम भगवान कैसे हैं कि नृशब्द नृशु सीधती की नृशब्द, मनुष्यों को भगवान ने बुद्धि दिया है, पशुओं को नहीं, इसीलिए बुद्धि को कहते हैं नृशब्द। मनुष्यों में बुद्धि बैठती तो ऐसी बुद्धि को रिंगी राम 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 मतलब देते हैं, रिंगी माने गति, जो बुद्धि को गति देते हैं, बुद्धि को दिशा निर्देश देते हैं, ठीक करते हैं, ऐसे भगवान की मैं शरण ले रहा हूँ, वे मेरी बुद्धि को ठीक करें, अपनी सेवा में लगाए रखें, हमारी बुद्धि किसी आनंद को भोगने में न लग जाए, ये और मैं उनकी सेवा करता रहूं। इस तरह ये प्रार्थना करते थे सवेरे सवेरे रोज, बाकी दिन भर बात भर पूजा करते थे बुद्धि को ठीक करने के लिए। जैसे कोई डॉक्टरी में जाए दवा लेने के लिए, वैसे दवा के रूप में इस श्लोक को पढ़ रहे थे कि हमारी बुद्धि ठीक हो जाए। तो बहुत ऊंची स्थिति है राजा श्री भरत की। इसके बाद हम लोग सुनेंगे कल सवेरे कि ऐसी ऊंची स्थिति में भी उनके जीवन में किस तरह विघ्न आ गया और बिल्कुल नीचे धरा कर गिर गए। ये भगवान की व्यवस्था है सब। हरे कृष्ण।